This is a News Laundry podcast, and you're listening to News Laundry Conversations.
Welcome to another election show. हमारा कारवां अब पहले चरण के उस हिस्से में पहुंचा है जहां पर चुनाव होने हैं. देहरादून इस समय हम मौजूद हैं. उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर पहले चरण में चुनाव होना है. उन्हीं सीटों के साथ, जैसे कि जिन 8 सीटों पर हम पहले रामपुर गए थे, उत्तर प्रदेश में होना है. 102 कुल सीटें हैं इस चरण में, और पहले चरण की इन सीटों में 19 तारीख को मतदान होना है. देहरादून का ये एक ऐतिहासिक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज. यहाँ की राजनीति में बहुत सारे छोटे बड़े कई चेहरे, इसके अलावा डिफेंस में और तमाम हिस्सों में आप बहुत सारे चेहरों को आप ऐसे यहाँ से निकले हैं जिनको आप जानते हैं. तो एक तरह से ये उनकी नर्सरी रहा है ये कॉलेज. और आज हम जो अनदर इलेक्शन शो का ये एपिसोड आप तक पहुंचा रहे हैं, ये थोड़ा सा कुछ मायनों में अलग होने जा रहा है. हम आम तौर पर युवा छात्रों छात्राओं से बात करते हैं. इसमें हमारे साथ युवा छात्र जरूर हैं, लेकिन कई सारे इसमें छात्र ऐसे हैं जिनके की किसी न किसी राजनीतिक दल से किसी तरह का जुड़ाव है. ये छात्र यूनियन से जुड़े लोग भी हैं, इसमें NSUI से जुड़े लोग हैं, इसमें लेफ्ट की पार्टियों से जुड़े लोग हैं, और इसमें एक यहाँ की इस अपने कॉलेज की एक छात्र इकाई है, आर्यन छात्र संगठन, उसके भी प्रतिनिधि हैं. ABVP के लोगों से भी हमने संपर्क किया था और उन लोगों ने आने का वादा भी किया था, लेकिन आखिरी वक्त में वो इस कार्यक्रम से हट गए. उन्हें कहीं जाना था, लोगों के अपने कुछ वजहें थी, किसी को शादी में जाना था, कुछ और चीज़ें कुछ लोगों ने बताई. तो मेरे साथ इसके अलावा 2-3 एक्सपर्ट भी हैं, जर्नलिस्ट हैं. वो लोग हैं जो उत्तराखंड की राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं. तो उनका मैं परिचय करवा दूं. मेरे साथ जय सिंह रावत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे संस्थानों में काम किया है आपने. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका.
नमस्कार.
इसके अलावा हमारे साथ राहुल कोटियाल हैं. राहुल कोटियाल मेरे पुराने साथी हैं. उत्तराखंड में यहाँ पर उत्तराखंड केंद्रित एक वेब पोर्टल है, 12 मासा. आप लोगों ने उसकी वेबसाइट भी देखी होगी, आप यूट्यूब चैनल भी देखा होगा, उसके एडिटर हैं. राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और इसके अलावा मेरे एक और पुराने साथी हैं और राजनीतिक उसमें काफ़ी सक्रिय उत्तराखंड के उसमें, प्रदीप सती. प्रदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और इसके अलावा बहुत सारे छात्र हैं. तो इनसे आज हम जो मुद्दे हैं उत्तराखंड की राजनीति में उसके बारे में बात करेंगे. वो क्या चीज़ें हैं जो वोट देने से पहले इनके वोट को निर्धारित करती हैं जब ये वोट देने के लिए जाते हैं. क्योंकि उत्तराखंड की थोड़ी सी मैं अगर राजनीति यहाँ की जो अभी इस समय है उसके बारे में बताऊं, तो पिछले जो 2014 का लोकसभा का चुनाव था, इसके अलावा 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, उसने जीती थी. इसी तरह से 2017 और 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उन दोनों विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी. तो कह सकते हैं कि ये 5वां मौका है जहां पर BJP एक बार फिर से मैदान में है और जीत की उम्मीद लगा रखी है. और कांग्रेस पार्टी 4 पिछली परीक्षाओं में असफल रही है, 5वीं परीक्षा उसकी कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी. मेरे साथ संयोग से कांग्रेस पार्टी के कई सारे कुछ जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी हैं. लेकिन सबसे पहले मैं रावत साहब से जानना चाहता हूं, जो यहां पर आपने देखा पिछले एक दशक की राजनीति में, क्या चीज़ होती है जो लोगों के वोट को निर्धारित करती है, तय करती है?
पहले क्या होता था, बारी बारी वाला सिस्टम था. बारी बारी का मतलब एक बार कांग्रेस एक बार BJP का सिस्टम होता था. इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का भी था. मतलब इसका मतलब था कि लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, जो थे कि भाई ये जिस पार्टी को वोट डाला है वो होगा, तो वो हो नहीं पाता था, वो कर देते थे. लेकिन कुछ समय से वो ट्रेंड बदल रहा है. अभी जो आपने देखा कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो ऐसा लग रहा था इस बार भी वही ट्रेंड चलेगा कि एक बार एक पार्टी एक बार दूसरी पार्टी. लेकिन अचानक उसमें हम बिल्कुल पहले फरवरी शुरू होने से एक दो दिन पहले वो अखबारों में, उसमें सोशल मीडिया में वो दाढ़ी वाले वो अपने उनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला शुरू हुआ, और उसने एकदम मामला पलट दिया। उसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो किसी एक पार्टी का बीजेपी को मिल गया कि ये हमको ज्यादा चुनावी नैया पार लगाएगा, क्योंकि अगर आप कोई करेंगे तो अभी भी आप देख रहे होंगे
एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया,
ध्रुवीकरण हो गया उसमें, और उन्हें एक बार वो मिल गया, एक अच्छा भी मिल गई
जी
वोटरों को कि कुछ करो या न करो। जैसे आज उत्तराखंड में भूमि कानून की मांग हो रही है
जी जी,
वो मूल निवास पर बात उठ रही है।
हाँ।
आपका
एक कमेटी भी बनाई है यहाँ की।
हाँ, कमेटी बनाई, वो यूसीसी के लिए 5 करोड़ खर्च हो गए उस पर 20 महीने में उन्होंने बनाया। उसमें तो कई असंवैधानिक को तो मांगा भी नहीं था, लेकिन वो केवल इसलिए किया गया था क्योंकि उसने शरीयत खत्म कर दी, आपका क्रिश्चियन पर्सनल लॉ खत्म हो गया, पारसी क्रिश्चियन लॉ खत्म हो गया, आनंद कारज एक्ट जो था सिखों का वो खत्म हो गया, केवल हिंदुओं का जो 1955-56 के जो पर्सनल लॉ है उन्हीं को खिचड़ी विचड़ी बना के ऊपर तो उसमें लिव इन रिलेशन डाल दिया, ये सारी चीजें। वो इसलिए हुआ कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, क्योंकि आप समझ रहे मंदिर भी चल रहा है, ये सारी चीजें। तो वो ट्रेंड आज की तारीख में लोगों को ये हुआ कि भाई हम कोई काम करें या नहीं करें, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया होगा सरकार ने, लेकिन सरकार को अपने काम पे भरोसा कम है और ध्रुवीकरण पर ज्यादा भरोसा है, ये चल रहा है
जी। तो एक और इस चूंकि काफी सारी एक मोटी मोटा जानकारी जो यहाँ के राजनीतिक हालात है उसकी जानकारी राव साहब ने दी है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ देहरादून, इसके कुछ हिस्से हरिद्वार लोकसभा सीट में आते हैं और इसके कुछ हिस्से टिहरी, सही कह रहा हूँ, टिहरी लोकसभा में आते हैं। तो जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो काफ़ी हैवी वेट ये लोकसभा हो गई। और इसके अलावा बसपा ने यहाँ से जमील अहमद कासमी को टिकट दिया है। ये 3 मुख्य उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट के तौर पर मीडिया के नज़रिए से न्यूज़ लॉन्ड्री के लोगों के लिए बहुत खास जानकारी है, उमेश कुमार के नाम से एक पूर्व पत्रकार हैं, वो भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उत्तराखंड के जो तमाम उम्मीदवारों में सबसे रिचेस्ट जो माने जाने वाले कुछ सबसे धनी जो उम्मीदवारों में से एक है वो, तो इस सीट के बारे में राहुल मैं जानना चाहता हूँ कि जो हरिद्वार की लोकसभा है उसके समीकरण क्या हैं, कौन लोग मुख्य चेहरे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं पहले।
हरिद्वार लोकसभा सीट जो है वो उसका अगर इतिहास पहले से देखा जाए तो वो 2 अलग अलग लोकसभाओं का खुद ही आज का जो स्वरूप है उस हरिद्वार लोकसभा का, कभी 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वो आता था, एक सहारनपुर और पहले एक देहरादून लोकसभा नाम से उत्तर प्रदेश के ज़माने में ये लोकसभा सीट हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद की बात करें, अगर राज्य गठन की बात की, तो 2000 के बाद जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में यही एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस भाजपा से इतर कोई और पार्टी जीती। सबसे पहले यहां से जो सांसद चुने गए उत्तराखंड बनने के बाद वो समाजवादी पार्टी से चुने गए थे, उसके बाद से बाकी की 5 सीटों पर हमेशा से कांग्रेस भाजपा ही रही है, लेकिन वो एकमात्र सीट थी। और उसका कुछ कारण ये है कि वही एकमात्र तराई का एक क्षेत्र है जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो उस लोकसभा क्षेत्र में आता है, लगभग 34% मुस्लिम आबादी वहाँ पर है
हरिद्वार लोकसभा में
जो मुस्लिम वोटर्स हैं लगभग 34% के करीब हैं, तो उन्हीं को केटर करने के लिए बीएसपी वहाँ पर एक फैक्टर बनता है। अदरवाइज बीएसपी की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें दलित केंद्रित राजनीति उनकी रही है।
हाँ।
लेकिन उनका कैंडिडेट जो है लास्ट मोमेंट पे उन्होंने शफल किया, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं जमील अहमद कासमी, उनको वहाँ से चुनाव में उतारा है। लेकिन बाकी की जो मेन फाइट जैसे कांग्रेस बीजेपी की यहाँ पर हमेशा से ट्रेंड रहा है वो फाइट है ही, कांग्रेस की तरफ से जैसा जिक्र किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वहाँ पर हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान यही है कि वो हरीश रावत के बेटे हैं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बदला है, रमेश पोखरियाल निशंक पहले वहाँ से सांसद होते थे जो कि केंद्र में मंत्री तक रहे, लेकिन अब उनको राजनीतिक वनवास पे भेज दिया गया है। और ये जिनको टिकट मिला है त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, इनका कुछ कारणों से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्हें हटाया गया था, तब से वनवास झेल रहे थे, अब केंद्र में
वनवास खत्म हो सकता है,
इनका राजनीतिक वनवास खत्म हुआ है।
प्रदीप आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा यायावर टाइप भी हैं, घूमते रहते हैं, तो उत्तराखंड में किस तरह का इस बार भी, हालांकि ये हम आमतौर पर इस तरह की बात में पढ़ते नहीं हैं, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर से 5-0 हो सकता है या कुछ माहौल बदल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर आ रहा है सत्ता विरोध की, या नहीं अभी भी मोदी उतने ही सॉलिड है और लग रहा है कि जिसको मोदी जी के आशीर्वाद दे देंगे, टिकट दे देंगे, वो पार फिर से हो ही जाएगा उत्तराखंड में?
आप इस को इस पर पहले एक बार मैं उत्तराखंड की ओवरऑल उसकी बात करूं इलेक्शन की, तो जैसे उत्तराखंड राज्य गठन को 20 साल हो गए और मोटा मोटी जब भी इस राज्य के एक बनने की एक वर्षगांठ पूरी होती है तो अमूमन जब एक तरफ जब सरकारें प्रशस्तिगान और ये सब करती हैं तो दूसरी तरफ हम एक हेडिंग हमेशा बनाते हैं कि नाकाम उम्मीदों का एक और बरस। तो मोटा मोटी देखा जाए तो इस उत्तराखंड का ये जो इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है ये भी एक तरह से नाकाम उम्मीदों का ही चुनाव है, क्योंकि एक आध कैंडिडेट को जिनकी पर्सनल कैपेसिटी की बात करें उनको छोड़ करके कोई भी उत्तराखंड से रिलेटेड मुद्दा यहाँ पर इस चुनाव में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की कल की रैली हुई तो कल की रैली में उन्होंने 370 की बात करी, जबकि उत्तराखंड में उसी 370 के सापेक्ष यहाँ पर मूल निवास की बात लोग कर रहे हैं। उन्होंने कल की रैली में राम मंदिर और तमाम दूसरे बात करी, ऋषिकेश में वो रैली थी जहाँ वो महिला शक्ति की बात कर रहे थे और उसी जगह पर उसी ऋषिकेश में उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई, उसकी हत्या की गई, भाजपा के पदाधिकारी जो है VIP उनके नाम, जिनके नाम उसकी माँ चीख चीख कर आजकल कह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्शन को मोदी वर्सेस ऑल बना दिया है, उनके कैंडिडेट, आपको ताजुब होगा उनकी कैंडिडेट स्टेज से ये कह रहे हैं कि मेरी गलती की सजा आप मोदी जी को मत दीजिए, क्योंकि ये वोट मेरा नहीं, ये चुनाव मेरा नहीं है। ये जो दूसरी बार के सांसद हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं अजय भट्ट साहब, वो नैनीताल से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप कुमाऊनी भाषा में लच्छेदार बहुत अच्छी बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि आप मेरी गलती की सजा आप मोदी जी को मत दीजिए। गढ़वाल से जो सबसे VIP कैंडिडेट बताए जा रहे हैं अनिल बलूनी साहब, वो रैलियों में कह रहे हैं कि जैसे ही आपका वोट कमल के निशान पर पड़ेगा वो मुझे नहीं वो मोदी जी को जाएगा। तो उत्तराखंड का चुनाव, उत्तराखंड के पांचों कैंडिडेट जो है वो एक तरह से डमी कैंडिडेट है। कल मोदी जी कह रहे थे कि ब्रह्म कमल है ये, लेकिन बेसिकली ये पांचों प्यादे से ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और जो जैसे कि जयसिंह रावत जी ने भी शुरुआत में कहा, जो ध्रुवीकरण जिसमें बीजेपी पास हुई है,
आज भी प्रधानमंत्री एक भाषण दे रहे थे मेरे ख्याल से जम्मू में या कहीं, और वहां पर वो बार बार इसी का जिक्र कर रहे थे कि कुछ नेता हैं जो नवरात्र के दिनों में मछली का वीडियो डाल रहे हैं और लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये मुगलों से प्रेरित है, मुस्लिम लीग से प्रेरित मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। ये सारी चीज़ें बार बार चुनाव में आ रही हैं, और जो कि ओवरऑल जो शुरुआत में बात है कि वो ध्रुवीकरण वाली जो राजनीति है उसको हवा दी जा रही है। इस पहले राउंड के बाद अब हमारे साथ जब हम युवाओं से बात करेंगे, उससे पहले आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। यहाँ पर मैं देहरादून में खड़ा हूँ, हमारे कम से कम 10 से 15 रिपोर्टर जो न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट से हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक अपनी रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं, और ये रिपोर्ट, ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये इंटरव्यूज़, ये शोज़ हम आप तक सिर्फ इसलिए पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि इस पूरे चुनावी कवरेज को आप सब लोगों ने फंड किया है। न्यूज़ लॉन्ड्री का ये पूरा इलेक्शन फ़ंड आपकी मदद से आप तक पहुँच रहा है। हमारे तमाम जो इलेक्शन फंड हैं, छोटे छोटे 6 हिस्सों में बटे हुए हैं, उनको आप पूरा करने में मदद कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर आपकी वो खबरें आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को और द न्यूज़ मिनट के इस इलेक्शन फ़ंड को ज़रूर मदद करें। युवाओं से बात हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे साथ इस माफ़ी के साथ कि कई सारी लड़कियों को आना था यहाँ पर, किसी न किसी वजह से कुछ लोगों को ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया। हमारे साथ सिर्फ एक ही लड़की यहाँ पर महिला के और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद हैं, अंकिता भंडारी का नाम सामने आया अभी, और उसमें बार बार ये बात कही जाती है कि एक भाजपा नेता थे जिनके बेटे की सारी उसमें भूमिका थी। इसके बावजूद दो चीज़ें हैं इससे जुड़े मेरे, एक तो उस मामले में जो कार्रवाई हुई या जिस तरह की कार्रवाई, उससे आप लोगों को क्यों निराशा है, नाराज़गी है, और दूसरा इन जनरल महिलाओं के मामले में उत्तराखंड, देहरादून, इस कैंपस को ले लें या यहाँ से बाहर निकलने वाली किसी सड़क को ले लें या यहाँ से दूर दराज किसी गाँव को ले लें, महिलाओं के लिए किस तरह की स्थितियाँ हैं?
भारतीय जनता पार्टी है जो कि सिर्फ यही काम करती है कि बस वो वादे बहुत बड़े बड़े कर लेती है, लेकिन अभी तक उन्हें उन्होंने एक काम भी ढंग का नहीं किया है। ना अंकिता भंडारी को न्याय मिला है, ना यहाँ पे भू कानून लागू हुआ है। हम लोग कई महीनों से, कई सालों से ये भू कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में भू कानून लागू नहीं हुआ है। हम लोग इतनी वीडियोस इतने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि मोदी जी हमारी बात सुने। जब हम भाजपा को बोलते हैं तो बोलते हैं मोदी जी है, हम तो मोदी जी के अंधभक्त हैं, मोदी जी को बोलिए। तो मोदी जी को बोल रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी के, जब आप ऋषिकेश में आए थे परसों, कल आप ऋषिकेश में जब भी हमारे उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं, तो अंकिता भंडारी के मुद्दे पर भी कुछ बात बोलिए और उत्तराखंड में भू कानून की मांग करें। जो हमने भू कानून की उत्तराखंड में मांग करी, उसको लागू किया जाए, हम ये मांग मोदी जी से बोलते हैं। लेकिन कोई हमारी बातें सुनने को राजी नहीं है। बस भाजपा वाले बोलते हैं इस बार तो 400 पार है, काहे का 400 पार है, यहाँ पे तो ना न्याय मिल रहा है ना भू कानून मिल रहा है। हम लोग घर से बाहर जाते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। जब से अंकिता भंडारी का जो केस आया है उत्तराखंड में सामने, तब से सबके घर वाले, हमारे घर वाले जब क्यों ना, वो शाम को पूछते हैं कि बेटी रात को जल्दी आना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड में, लेकिन जहाँ पे अभी कोई बात नहीं हो रही है।
तो ये तो एक तो आपने बताया अंकिता, दूसरा जो मेरा सवाल था कि किस तरह की इन जनरल महिलाओं के लिए स्थितियां हैं सड़कों पर, कैंपस में, गांव में, अलग जगहों पे।
मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं की स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा, जब से भाजपा सरकार है, जो भाजपा सरकार आई है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा वीक है। जैसे मैं देखती हूँ घर से बाहर निकलते, कहीं निकलते, बसों में लोग कैसे हमें देखते हैं। अगर हमारे, अगर पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो अभी हमारे सीएम हैं, अगर वो कोई, अगर कोई एक्ट यहाँ पे लागू कर दिया जाए कि हमारी जो महिलाएं हैं वो बाहर सेफ हो सकती है, या कोई छेड़ेगा तो कोई ऐसा हो जाएगा, धारा ये अगर वो यहाँ पे लगा दिया जाए, तो अब मुझे लगता है कि महिलाएं सेफ हो सकती हैं। अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने यूसीसी एक्ट वही चालू कर दी, ये ऐसे ऐसे एक्ट वो चालू करे, इनमें वो पैसे खर्च कर रहे हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे फ्री बस की जो सेवा है वो होनी चाहिए। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनमें मैं बात करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारी जो बहन बेटियों के साथ इतना कुछ हो जाता है रातों रात, जिसकी खबर मीडिया औरों तक नहीं पहुंचाती है, कि वो कहती है कि भाजपा का राज है। भाजपा के राज में ऐसा हो रहा है कि अब वो बोलते हैं मुद्दे तो बड़े बड़े कर लेते हैं, 400 पार है। तो यही मुद्दा जो उनका है, तो मैं चाहती हूँ भाजपा सरकार से इस बार उम्मीद ना करें। उत्तराखंड से कोई उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है, जब तक के लिए हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा और उत्तराखंड में भू कानून लागू नहीं होगा, तब तक के लिए हम भाजपा सरकार को वोट इस बार कोई देने नहीं वाला, ना हम भाजपा सरकार को यह देखना चाहते हैं।
यूसीसी का जिक्र आया, मैं यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं और यूसीसी को लेकर कई सारी बातें कही गई, उसमें आप लोगों से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और फिर पत्रकारों से उस कानून की खामियों के बारे में जानना चाहूँगा। यूसीसी कानून जो आया है, जैसे उसकी कुछ धाराएं हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उससे युवा वर्ग में ही उससे चिढ़न हुई, जैसे लिव इन को लेकर या पार्टनर को लेकर, जिस तरह के आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। तो ये स्थिति एक तरह से पुलिस को वेपनाइज कर देती है, पुलिस को एक ऐसे हरेसमेंट का एक हथियार देती है कि आप किसी को भी उस स्थिति में पुलिस उठा सकती है और आप एक अपराध के भागीदार हो ही जाते हैं कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निजता का मामला है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते, फिर भी एक कानून पास हो गया। आप लोग इसको कैसे देखते हैं?
आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी, उसमें सेंट्रलाइज्ड आपने कहा, थोड़ा सा हम लिव इन को लेकर बात करें। आप ये कहिए कि वेपनाइज करना, तो इन्होंने हर चीज़ में वेपनाइज किया है कि शरीयत, क्रिश्चियनिटी, इन्हें अलग करना था ना, इन्हें अलग करना था, यह दिखाना था कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, इन्हें यह दिखाना था कि किस तरह से ये राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में है और पुनः सत्ता की ओर अग्रसर है, जिसे अभी शशि थरूर ने एक अपने भाषण में कहा कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑटोक्रेटिक इलेक्टोरेट, तो उसकी परिभाषा तो है, ये उत्तराखंड को तो पूरे देश में बेचा जा रहा है, उत्तराखंड के नीतियों पे जो मोहर लगाई जा रही है वो बेचा जा रहा है। आप अंकिता भंडारी जी का इन्होंने नाम लिया, आपके, आपका सवाल मूल सवाल और सामान्य है कि आप पुलिस को वेपनाइज कर रहे हैं।
ठीक बात, मैं थोड़ा और लोगों से बात कर लो, आप बताएं मुझे जो बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हम एक युवा के तौर पर फेस कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों के आधार पर सरकार चुननी है कि सरकार जो आए या जो मेरा प्रतिनिधि चुना जाए वो इस समस्या को कम करे, या ये चीज़ें हैं जिनको ख़त्म करना चाहिए सबसे पहले।
आज जो उत्तराखंड की स्थिति बढ़ती जा रही है, लोग राम के नाम पर जो मस्त हैं उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि राम के अलावा भी कुछ है। आप ये बताइए, आप देशों में बुलेट ट्रेन तो चला रहे हो, मगर जब हाथ में पैसा नहीं होगा तो कौन उसकी सवारी करेगा? आप ये बताइए, जब रोज़गार नहीं होगा तो कहाँ से पैसा आएगा? आज रोज़गार ख़त्म करा जा रहा है। कल मैंने हाल ही में देखी जिसमें धामी जी कहते हैं कि 22 साल में हमने इतना रोज़गार दिया कि आज तक कभी नहीं मिला। वो रोज़गार यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहे? मैं, मेरे साथी, हर दिन जो है रोजगार ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म में, तो आप बताइए हम उत्तराखंड के वासी कहाँ जाएंगे। डीएवी की स्थिति आप देखिए आसपास, तो डीएवी में जो स्थिति है जैसे बच्चे नहीं आते यहाँ पर, और एक तरीके से जो मतलब आप देखिए कि राम मंदिर का अगर मैं मुद्दा लूँ राज्य में, तो जिस तरह से पॉलिटाइजेशन करा गया था कि अगर मैं देखूँ गौर करूँ तो मैंने धामी जी के फॉलोअर्स देखे थे राम मंदिर के मुद्दे से पहले, और जब घंटाघर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई उसके बाद अब धामी जी के फॉलोअर्स देखिए। एक छोटी सी पंक्ति है जो मैं कहना चाहता हूँ कविता के माध्यम से कि आप लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं, कि आप लोगों के राम जपों में पहले सा आराम नहीं, सब कुछ है मगर राम नहीं। आज राम राम तो कह लोगे मगर राम का दुख सहना होगा, तो वो स्थिति यहाँ पर बन गई है।
मैं एक दो आंकड़े रखना चाहता हूँ। बेरोजगारी की दर जो बात कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड में 30% के आसपास रोजगार की दर है। कुछ आंकड़े और हैं, मसलन महिला साक्षरता की दर यहाँ पर 70% से नीचे 69, जो कि पूरे देश का जो औसत है 74 उससे काफ़ी नीचे है। इसी तरह से लैंगिक असमानता भी महिला और पुरुष की शैक्षिक, पुरुषों की जो शैक्षिक दर है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, महिलाओं की काफ़ी नीचे है, तो औसत में मिलकर भी वो राष्ट्रीय स्तर को नहीं पहुंच पाती। नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वो राष्ट्रीय औसत उसका 35.2% है, उत्तराखंड में 39.1% है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर मैं जानना चाह रहा था आप लोगों से, और एक इधर कि जब ये वोट डालने की बारी आती है, जब आप लोग जाते हैं तब ये मुद्दे काम करते हैं या फिर UCC या राम मंदिर या मजारों का मुद्दा यहाँ पर काफ़ी कुछ समय पहले गर्म था वो काम करता है, क्या मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वोट डालते समय?
सर्वप्रथम तो सबको ऐसा लगता है कि भाजपा को छोड़ के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो राम भक्त नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जो राम भक्त है, और सिर्फ मोदी जी हैं जिनकी वजह से ये राम मंदिर बना है। ये एक बहुत बड़ा जो गलतफहमी लोगों के दिल में है। दूसरी बात यह है कि लोग मुद्दे छोड़ के, बेरोजगारी दर देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर वेपनाइजेशन देख लीजिए, ताकि पुलिस का यूज़ देखिए, ED CBI का यूज़ देखिए, जो अरविंद केजरीवाल पर अभी चल रहा है हाल ही में, जेल में है वो, कैसे बर्बरता तरीके उन पर आजमाए जा रहे हैं, उससे पहले संजय सिंह थे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं लोग इन पर ना ध्यान दे के, मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म का मुद्दा हो या फिर जाति का मुद्दा हो, लोग इसी पर ध्यान देते हैं आजकल। और ऐसा है कि अगर आप किसी को समझाने भी जाएंगे तो वो उसमें खुश हैं कि हम मोदी जी के ही साथ हैं, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग अपने पर्सनल कैंडिडेट्स को ना देख के मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेरे से पहले बात बताई कि हम इस लोकसभा चुनाव को ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि एक सांसद को चुनने का चुनाव है, हम ऐसा चुन रहे हैं कि हमें मोदी जी को चुनना है।
जो व्यक्ति होता है, जो आम आदमी होता है, उसके जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उसका सबसे पहला असर होता है। अभी यहाँ पर जो युवा, जिस वर्ग से मैं बिलोंग करता हूँ, तो युवा पिछले साल यहाँ पर आंदोलनरत था, 8 घंटे तक राजपुर रोड ब्लॉक रही, और उसके बाद जो उसका जो बुनियादी मांग थी जो युवा की उस आंदोलन के अंदर, ये थी कि ये जो भर्ती घोटाले हैं इनके अंदर CBI की जाँच होनी चाहिए, और वो भर्ती घोटाले करने वालों में से वो हकम सिंह, उसको पोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है कि हम सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग हैं। उसके बाद जो दूसरा जो महिलाओं की सेफ्टी की जो बात है उसके अंदर अंकिता भंडारी के जो आरोपी हैं उसको इम्प्यूनिटी दी गई वर्चुअली, कैसे उसके जो सबूत हैं वो मिटाए गए,
बिल्डिंग गिराई गई
और ये करने के बाद जो है पुलकित आचार्य को बचाया गया। पुलकित आचार्य को अब आप दोष सिद्धि करने में बड़ी मुश्किल होगी, और ये कहते हैं कि हम जो हैं सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं। लोग जब इन मुद्दों के ऊपर जाएंगे आने वाले टाइम में, तब भाजपा उनको मुद्दा बताएगी कि हिंदू खतरे में है, वो 2050 तक उनकी संख्या इतनी हो जाएगी, औरंगजेब ऊपर आ जाएगा, इसलिए आप भूल जाइए। हम चाहे जितना मर्जी अधर्म करते रहें, हम चाहे जितनी अंकिताओं को सूली चढ़ाते रहें, उनका बलात्कार करवाते रहें, हम चाहे कितने रोजगार खत्म कर दें, उसके बावजूद औरंगजेब आ जाएगा, आपने औरंग, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये जो मुद्दे क्रिएट करने की जो इनकी मशीनरी है, ठीक है, क्या मुद्दा है क्या मुद्दा नहीं है जनता को लगातार, वो आपने जो बात की 95% जो वो है उस जो मीडिया है, एडवर्टाइज मीडिया है, उससे लगातार बरगलाया जा रहा है। और एक बहुत ज़रूरी बात, हमारा उत्तराखंड राज्य जो है इसका 30% जो जनता है वो सैन्य परिवारों पर आश्रित जनता है, 30% पॉपुलेशन, हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे, हम में से जो साथी यहाँ पर हो सकते हैं इनके बेटे फौज में हो, मेरे फादर फौज में रहे, मेरा पूरे परिवार फौज में रहा, और हम देखते हैं कि इन्होंने वो जो सेना की नौकरी थी उसके अंदर ठेकेदारी प्रथा कर दी, क्या ये कोई पवित्र कार्य है, क्या ये धर्म का कार्य है? और रही बात धर्म की डेफिनेशन की, तो आप किसी चोटिल गाय को आप पट्टी भी कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, उसको भी धर्म का कार्य कहा जाता है। और इन तमाम चीज़ों को जो ये चीज़ें चल रही हैं इस देश के अंदर, आप रोज़गार, परमानेंट रोज़गार आप ख़त्म कर रहे हैं, आप महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्या इसको धर्म कहा जाएगा? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जो धर्म की जो जो डेफिनेशन उसके हिसाब से तो ये लोग अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं।
एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं जोड़ दूँ, क्योंकि ये बातचीत में बार बार आ रही है और कंटिन्यूएशन में अगर आप यहाँ के उत्तराखंड की राजनीति को देखेंगे तो रिलीजियस आधार पर चाहे वो नीतियाँ हों, चाहे नेताओं के बयान हों, उसमें उसका एक धार्मिक अंडरटोन हमेशा आपको सुनाई देगा। चाहे वो UCC बनाने की बात हो, चाहे मजारों को चिन्हीकरण कर ध्वस्त करने उन पर बुलडोजर चलाने की बात हो। उत्तराखंड की जो आबादी है उसमें मुस्लिम आबादी 13% के आसपास है ओवरऑल। सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन है उसका जिक्र राहुल ने थोड़ी देर पहले किया, वो हरिद्वार की लोकसभा सीट है जिसमें 30% से ऊपर आबादी है थोड़ी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राम मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हो, मजारों का मुद्दा हो, और चाहे ये आपका UCC का मुद्दा हो, बार बार ये चीज़ आती है कि किसी भी तरह से चुनाव को पोलराइज किया जाए। नेताओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि नेता जनता की नब्ज को, उसके मानस को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उस माहौल में क्या ये एक मैसेज है, ये इसका निष्कर्ष इस निहितार्थ निकाला जाए कि यहाँ की जो मेजॉरिटी जनता है वो धार्मिक आधार पर वोट देती है, उसको आसानी से धार्मिक आधार पर आप कहें अपने पक्ष में लाया जा सकता है।
देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का सर्वोच्च जो धाम है बद्रीनाथ है, चार धाम है ना?
जी जी,
ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, 11वां वो भी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। कहते हैं जितने कंकण उतने शंकर, मतलब कण कण में यहाँ पर लोगों की आस्था है कि यहाँ भगवान है। तो लोग थोड़ा आस्था इनकी ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को बर्ग ला, तो सब पहाड़ी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो उनको बर्ग लाना आसान है, लेकिन हाउ लॉन्ग, कब तक करोगे? दूसरा, राइट टू रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यहाँ एडवोकेट्स हैं, इन पर लॉ के जानकार हैं, ये तो फंडामेंटल राइट है, आप उसका वायोलेशन कैसे कर सकते हैं? तो ये कुछ नहीं है, ये केवल चुनावी है, चुनाव में एंटी मुस्लिम, क्योंकि शरीयत खत्म कर दी। तुम कौन होते हो शरीयत खत्म करने?
और अच्छा, वो धार्मिक चीजें और आसानी से खत्म नहीं होती।
ये अब ये जो 2024 का जो चुनाव है, मोदी जी हिंट भी कर चुके हम बहुत बड़े फैसले लेंगे, बहुत बड़े में एक ये भी है, UCC लगाएंगे। UCC लगाने के लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा। तो डर ये है कि अगर 400 सचमुच पार हो गए और उस लोकसभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हम आज के बाद संविधान सभा हैं, आप समझ रहे हैं?
जी जी।
अगर संविधान ही पलट गया, उसने कहा कि हम संविधान सभा हैं, तो फिर क्या होगा? असली डर जो है इस देश की, मुझे लगता है उसकी चिंता है।
तो ये एक स्थिति है जो अभी एक तरह का आकलन है, ये इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। मैं प्रदीप के पास जा रहा हूँ, एक आंकड़ा बता दूं कि ये जब चिन्हीकरण करवाया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि जंगलों में उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में अवैध मजारें और उपासना स्थल, उसमें हिंदू धार्मिक स्थल भी हैं, मंदिर भी हैं, वो कितने हैं? आश्चर्यजनक रूप से उसमें मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ एक चीज़ पर चलाया गया और वो सबको पता है। तो क्या वो चीज़ असर कर रही है? राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के आधार पर वोट देने की प्रवृत्ति आपको दिख रही है एक इन जनरल लोगों में?
बिल्कुल, जो जो एक हमारे भारत में और खासकर हिंदी पट्टी के समाज में जो एक धारणा है बहुसंख्यक समाज के मन में अल्पसंख्यक समाज को लेकर के डराने की भावना, उस भावना का पूरा दोहन, पूरा प्रयोग BJP ने सफल प्रयोग किया। आपने मैं बचपन में, हम अपना उदाहरण देते हैं, हम कई बार जैसे बचपन में हमारे गांव में कुछ गैर समुदाय, कोई दूसरे समुदाय के लोग रहते थे हमारे समाज के बीच में से, तो हमें सिखाते थे कि यार उस तरफ से मत जाना, वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो हम बहुत दिनों तक डरे रहते थे उस इलाके में जाने से, ये बहुत जगह होता था, तो उस जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, जब तक समझ में आई तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सेम यही स्थिति है। आप हल्द्वानी की बात करें जहाँ अभी ये सब
दंगे हुए,
आप पुरोला की बात करें, पुरोला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आप देखिए पुरोला में दो घटनाएं हुई, एक तो पुरोला में घटना हुई, वहाँ एक जो लव जिहाद बनाया पूरा देश में, इतना बड़ा माहौल बना, बड़ी बड़ी सरकारों ने तक बयान दिए, वहाँ पूरी
वहाँ से पलायन हो गया,
पलायन होना पड़ा। उस दिन उस घटना के दो दिन के बाद मैंने सरसरी तौर पर एक अखबार देखा और उस अखबार में था कि पुरोला से अपहृत 18-19 वर्षीय लड़की बरामद हुई, और वो लड़की जब बरामद जिनके द्वारा हुई वो उसमें से तीन लोग थे, तीनों लोग पुरोला के थे, सेम धर्म के थे, जो एक लड़की महिला थी और दो पुरुष थे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। पिथौरागढ़ धारचूला हो या वही पुरोला हो, हर दिन लगभग हर तीसरे दिन न्यूज लॉन्ड्री तो मीडिया की सब खबरें लेता ही है, हर तीसरे दिन वहां से गर्भवती महिलाएं जिनको आप कंधों पर लाद कर अस्पताल पहुंचाते हैं, प्रसव पीड़ा से जो 10-10 किलोमीटर लेकर के आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है वहाँ, अजन्मे बच्चे के साथ उसकी डेथ हो जाती है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन धर्म का डर जो है, जो आपने कहा राम मंदिर की, सब जब सरकार खुद आप खुद कर ये कह रहे हैं कि एक राज 10 साल तक प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री, जब एक पोलिटिकल पार्टी के नेता द्वारा खुद बनाए गए वीडियो, जिसमें खुद वीडियो बना करके मछली का वीडियो दिखा रहे हैं, उसका देश भर में प्रचार जब किया जा रहा है, तो आप सोचिए कितना बड़ा अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की, ये सबसे बड़ा डर इनका यही है।
राहुल, मैं आपके पास आना चाहता, ये मेरा सवाल वही है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रह गया है यहाँ पर, और उसके अलावा ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड की पूरी राजनीति में जो भी है राजनीति हो रही है उसमें नया राज्य बना था, और उस राज्य बनने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए उत्तराखंड का ये हिस्सा पूरी तरह से निग्लेक्टेड था, उसकी पहुंच नहीं थी, बहुत आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, सड़कें हो, बिजली हो, ये सारी चीज़, पानी बहुत बड़ी दिक्कत थी, पहाड़ों में ऐसा लगता है कि चारों तरफ हो लेकिन पीने के पानी जैसी चीज़ें, वो सारी चीज़ों की बजाय राजनीति पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस पर क्यों केंद्रित हो गई है, धर्म पर। यहाँ
देखिए उसके कुछ फैक्टर्स मोटे मोटे तौर पर समझे जा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो जो लोग इस आंदोलन के पीछे सबसे मजबूती से खड़े रहे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो लगभग धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 22 सालों में धीरे धीरे इररेलीवेंट होता चला गया। लोगों के मन में उसके प्रति सेंटिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 70 में से एक भी विधायक आज उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं रह गया। तो उस वजह से ये हुआ कि हाँ, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पैदा हुआ वो राष्ट्रीय पार्टियों का हुआ, कोई क्षेत्रीय पार्टी रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, तो नेशनल पार्टीज़ का जब रिप्रेजेंटेशन है, और वो भी इतने कमज़ोर नेता हैं कि किसी भी नेता का, मेरे ख्याल से उस लीग के अंतिम नेताओं में हरीश रावत होंगे जिनका कभी व्यापक जनाधार हुआ, वो भी था उस सब के साथ भी अब था लगाना
पड़ेगा। ये लोग किसी भी मोमेंट पे हटाए जा सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, बैठाए जा सकते हैं।
बिल्कुल, तो अब ये जैसा कि प्रदीप ने भी जिक्र किया कि डमी कैंडिडेट्स जो हैं उस तरह के, यहाँ पर स्टेट का अपना नेतृत्व वैसा हो गया है, तो इसके कारण एक बड़ा फैक्टर ये हुआ कि उत्तराखंड एक परफेक्ट गिनी पिग बन गया किसी भी तरह की पॉलिटिक्स को, एक लैब बन गया, एक मिनिएचर बन गया, जिस भी राष्ट्रीय राजनीति को अगर किसी कभी बड़े पैमाने पर बाद में एक्सपेरिमेंट करना है, वो एक्सपेरिमेंट पहले उत्तराखंड से शुरू किया जा सकता है और उसके रिपरकशंस को भांपा जा सकता है। UCC परफेक्ट एग्जांपल है उसका। वरना आप सोचिए कि एक ऐसा स्टेट जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, पहाड़ों का पहाड़ी राज्य इसको कहते हैं, और पहाड़ों में कोई भी ऐसा जिला नहीं जहाँ 3% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो। जो मुस्लिम आबादी है भी वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और तराई के इलाकों में,
हल्द्वानी या फिर
हल्द्वानी वाले इलाके या देहरादून के कुछ पोर्शंस, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, इन इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन है। लेकिन UCC को फिर भी यहाँ से लाया जाता है, लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज देश भर में जाता है, और उस तरह, और वो इसलिए यहाँ पर बहुत आसानी से संभव है क्योंकि यहाँ पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का, जो भी तय करेगा वो बिना किसी चूँ के यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोई ना तो कोई इंटरनल, बीजेपी में तो केंद्र में ही कोई ऐसे नेता नहीं रह गए हैं जो कि मोदी शाह के फैसलों के खिलाफ बोल सकें, तो इस राज्य स्तर पर तो वो बिल्कुल भी नहीं है।
एक और चीज फिर मैं आखिर राउंड में लोगों से बात करूंगा, पलायन एक बड़ी बात होती है, और पलायन एक तरह से नेशनल मीडिया के लिए यहाँ पर एक तरह से टूरिज्म जर्नलिज्म वाली स्थिति हो गई कि वो आता है यहाँ पर और रिचुअल स्टोरी करके चला जाता है कि घोस्ट विलेज है यहाँ पर, लोग छोड़ के चले गए, और वो फिर वही चीज़ आती है कि बेसिक सुविधाएं शायद दूर दराज के गाँव में नहीं है। दो बड़े सेंटर बन गए हैं, एक देहरादून हो गया गढ़वाल वालों के लिए, एक हल्द्वानी उधर बन गया है कुमाऊं वालों के लिए, जहां पर आके सब लोग बस जाना चाहते हैं उतर उधर से आ जा जाते हैं। ये पलायन की स्थिति आज क्या है और वो चीज़ें क्या किसी तरह से इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं मुद्दे के तौर पर?
नहीं, मुद्दे के तौर पर नहीं है, और यही अफसोस की बात है कि मुद्दे के तौर पर कोई भी मुद्दा फिलहाल पांचों सीटों पर कोई मुद्दा कवर कर रहा हो ऐसा इस इलेक्शन में नज़र नहीं आता। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे एक काफ़ी उससे असंतोष है, जो कि मल्टीपल सीट्स पर नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी रावत सर ने भी जिक्र किया था कि एक नाम जो उन्होंने लिया कि बॉबी पवार नाम का 26 साल का एक लड़का अगर इलेक्शन को इस स्टेट पे ले आया है कि सीधे सत्ताधारी पार्टी के उस सीट में चुनौती देने की स्थिति में है, जो सीट अगर आज़ाद भारत में 19 इलेक्शन हुए तो 19 में से 12 बार यानी लगभग 60 साल तक जिस सीट पर एक परिवार का कब्जा रहा, लेकिन आज एक 26 साल का लड़का अगर उस कैंडिडेट को चुनौती देने की स्थिति में है तो वो एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, असंतोष जो है लोगों का, उस असंतोष का एक रिप्रेजेंटेटिव वो एक 26 साल का लड़का बन गया है। माइग्रेशन अभी लोगों को उतना रियलाइज़ नहीं हो रहा है जितना 2003 आज से आने वाले 5 साल बाद होगा, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज जो होने जा रहा है वो परिसीमन का होगा। अब जो अगला परिसीमन है उसमें पहाड़ की सीटें इतनी कम हो चुकी होंगी कि हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री जो हों वो हल्द्वानी या देहरादून से ही चुने गए हों, जिनका बचपन पूरी तरह से यहीं बीता हो, जिन्होंने पहाड़ कभी नहीं देखा हो वो पहाड़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो परिसीमन के बाद शायद लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि माइग्रेशन कितना बड़ा, कितना ड्रास्टिक चेंज इस पहाड़ी राज्य के लिए, कितना ड्रास्टिकली वो बदलने जा रहा है चीज़ों को।
ये ठीक बात, पहाड़, ये जो पलायन का पूरा मुद्दा है ये एक बड़ी चीज़ रही जिसको कि मैं यहाँ पर जो हमारे साथ यंग लोग मौजूद हैं उनसे समझना चाह रहा हूँ। आप लोगों में से कितने लोग मूल रूप से देहरादून के हैं और आप केवल, बाकी सारे लोग देहरादून के दूसरे ज़िलों से आए हैं, वे यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तस्वीर है कि कितनी बड़े पैमाने पर पलायन है लोगों का। और ये पलायन सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग देहरादून रुकते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली बम्बई और देश के दीगर इलाकों में चले जाते हैं कामकाज की तलाश में। आप लोगों से मेरा बस आखिरी सवाल कि जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें, पलायन की बात हुई, हमारे सामने राम मंदिर का जिक्र आया, तो ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे किसी तरह से आप लोगों के दिमाग में रहने चाहिए या कि नहीं, और भी चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप लोग वोट करेंगे? सबसे पहले आप बोलें फिर आप।
देखिए, ये जो आपने मुद्दे बताए हैं ये अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन लोगों के पैदा किए हुए मुद्दे तो हैं जो हम सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, लेकिन ये समाज बहुत गंभीर, मैं कहना चाहता हूँ लोकतांत्रिक परिस्थिति की ओर जा रहा है। मतलब लोकतंत्र कहना इस समय बहुत खतरा है, इस बात का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी किसी चुनावी विश्लेषणकार ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में 10 साल से ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, अब प्रधानमंत्री के पद पर एक व्यक्ति दोबारा आना चाहता है। आप समझिए कि इस पूरे प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय केंद्र का है वो हेमवती नंदन बहुगुणा का है, इस कैंपस के अंदर एक भारी मात्रा में, इस कैंपस के अंदर जहाँ हम बैठे हैं भारी मात्रा में स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है। मैं यहाँ बैठकर ये बोलना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक छात्र आज के समय में कक्षा में आना सहज महसूस कर रहा है, और ये शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें कहना पड़ रहा है।
आप
जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की जो कोशिश थी डिवाइड एंड रूल की, उसमें वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, आई एम सॉरी, कि कामयाब हुई है। और मैं आपसे, आपके थ्रू भाजपा के नेताओं को भी ये प्रश्न पूछना चाहूँगा अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे, कि हम लोग इस समाज से आते हैं कि बचपन से ही, चाहे आप स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, हम लोग वहाँ पर एक भाईचारे के तौर पर रहते हैं। हम स्कूल में भी अगर रहते हैं तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बाद में देखते हैं। छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ, किस्सा भी क्या, एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप स्कूल में टिफ़िन भी लेके आएगा कोई बच्चा तो उस पर 10 लोग वैसे भी आ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सिख, कौन ईसाई, कौन हिंदू मुस्लिम। आप फौज देख लीजिए, फौज में सिख भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो क्या भाजपा ये दर्शाना चाह रही है कि हमारे देश की फ़ौज को कमज़ोर करना चाह रही है? क्योंकि कुछ हद तक अगर ये लोग, अगर ये जो इतना हेट्रेड है ये हमारे देश के युवाओं में लोगों में फैला रही है, तो कुछ हद तक ये फौज में भी जाएगा, किसी दिन ये हमारे पार्लियामेंट में भी जाएगा, देन हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी जाएगा, तो ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो रहा है। जैसे डेमोक्रेसी कहना, तो जैसे कि भाई ने बोला बताया यहाँ पे कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और डिक्टेटरशिप की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं।
आप बताएं।
मेरा तो अहम मुद्दा आजकल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेन मुद्दा है आजकल पलायन का। हम लोग ऊपर से जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, मैं एक्चुअली मैं टीरी से बिलोंग करती हूँ, हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसा है जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में भी अभी तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो सरकार ने हाल ही में हमसे वादा किया था कि हम आपके गांव में पानी लाएंगे, पानी की पाइपलाइन तो है पर पानी नहीं आता है। समस्या तो मेन मुद्दा तो यही कि पानी नहीं आता। कहीं कहीं हमारे उत्तराखंड में कई जिले कई क्षेत्र ऐसे जहां अभी तक रोड़े नहीं है। अब बताओ, अगर हमारे जो जैसे मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ, जो हमारा क्षेत्र है मार्केट का एरिया वो पड़ता है श्रीनगर, अगर आपकी ज़्यादा इमरजेंसी में तबियत खराब हो जाती है तो वहाँ पर श्रीनगर में इतने हॉस्पिटल नहीं है कि हम वहाँ पर जाके किसी को, महिला है कोई भी बुजुर्ग आदमी, उसको वहाँ पे जाए दिखाएं। वो लोग बोलते हैं कि जॉली ग्रांड लेके जाए। अगर कोई आदमी अगर सीरियस कंडीशन में है, अगर उसे हमें यहाँ रेफर करना होगा, तो उसे लाते लाते कभी कभार तो ऐसा होता है कि आदमी के मतलब श्रीनगर से देहरादून का सफ़र है वो 4-5 घंटे का सफ़र होता है, आधे रास्ते में आदमी की जान चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि हम आपके श्रीनगर में हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे, ताकि वो आपको हाल ही में आधा घंटे में देहरादून की व्यवस्था होगी और आप हमारे जो पहाड़ के लोग हैं उन्हें कोई ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी और हम आपके गांव में पानी लाएंगे। ये इतने बड़े बड़े हमसे वादा कर रहे हैं।
श्रीनगर में हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, बनाएंगे देहरादून में।
हाँ, बनाएंगे ना देहरादून में बनाने, वहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। आजकल का जो आधा से ज्यादा युवा हमारा श्रीनगर का है वो यहाँ।
तो अब जब ऊपर के लेवल पे ही मतलब जहाँ पर जो हमारे नीति निर्धारक लोग हैं उनके दिमाग में यही सोच है कि हम बनाएंगे यहाँ पर, वहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों को यहाँ पर लाके इलाज करवा लेंगे, तो वहाँ पर फिर कैसे बनेगा?
उत्तराखंड की विधानसभा का सत्र चल रहा था इसी हेल्थ की प्रॉब्लम को लेकर के, और बागेश्वर एक जिला है उत्तराखंड का, और वो बागेश्वर उत्तराखंड का मतलब पूरे भारत में कुली बेगार आंदोलन की क्रांति का वो जिला है। जब वहाँ कुली बेगार आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी ने उस वक्त सलाम भेजा था कि इस तरह की क्रांतियाँ भारत को आज़ादी दिलाएंगी। तो बीजेपी के विधायक ने विधानसभा के भरे सत्र में सरकार से सवाल पूछा कि हमारे बागेश्वर के जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, उसमें एक डॉक्टर नहीं है, और मैं आपको इतने दिन से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ डॉक्टर कब तक पहुँचाएंगे? तो आप ये सोचिए कि मतलब इस बेशर्मी को देखिए कि जो चिकित्सा मंत्री हैं वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ में डॉक्टर पहुँचाने के लिए बहुत हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद भी नहीं पहुंच रहा है। और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट की है, ये उनका रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड वीडियो है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे रिकॉर्ड दरख्वास्त की है, और शायद कुछ दिन के बाद उनको और फोन करूंगा। और
ये बड़ी विडंबना वाली कहानी है कि आमतौर पर ये वही लोग हैं जो वहाँ उन्हीं गाँव से पलायन कर आए, निकल कर आए मजबूरी में कि यहाँ कुछ नहीं है तो चले वहाँ पढ़ेंगे, कुछ बन जाएंगे, लेकिन उनके भी ऊपर एक तरह की ये रोशनी डालता है उन चेहरों पर भी, लेकिन वो वहीं वापस जाकर काम नहीं करना चाहते। मंत्री जी ने तो एक बात कही जो एक बेदिली दिखाती है, लेकिन जो लोग नहीं जाके वहाँ काम करना चाहते ये उनके ऊपर भी एक तरह का एक कमेंट है। आप अपनी बात पूरी करना।
ये जो पलायन वाली बात है, वो कह रहे थे जैसे एक बार सत्र चल रहा था गैरसैंण के अंदर, जो आंदोलन की जो एक्सपेक्टेशन थी राजधानी हो उत्तराखंड के केंद्र में जो जगह है
जी,
वहाँ पर जब सत्र चल रहा था तो वहाँ पर जो सम्मानित विधायक थे, रूलिंग पार्टी यही भाजपा थी, तो चिकन लेने के लिए हेलीकॉप्टर वहाँ से गैरसैंण से देहरादून भेजा गया था चिकन खरीदने के लिए। एसएस नेगी जी एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने एक गैदरिंग के अंदर पूरी गारंटी के साथ इस बात को कहा था। तो जब आलम यह है तो हम कैसे अपेक्षा करें? और जो बुनियादी सुविधाओं की बात है, हमारे ज़िले में नारायणबगड़ ब्लॉक है, वहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके अंदर महिला गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। जो श्रीनगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो रेफरल सेंटर है, वहाँ पर जो है एक सिंपल सी सर्जरी जो है वहाँ पर नहीं हो सकती है। केरला जैसे राज्य ने अभी जिला अस्पताल के अंदर जो है किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव हमें दिखता नहीं है जहाँ पर इस तरीके से ढंग से हो पाए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो पलायन होगा। अब यहाँ पर एक और ट्रेंड यहाँ पर है कि पहाड़ के अंदर जो लड़कियाँ हैं, माँ बाप ऐसे व्यक्ति से शादी उसकी नहीं करा रहे हैं जिसका देहरादून में घर नहीं है। उसका कारण यही है कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो मेरी बेटी को जो है दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। ना ये बाप की गलती है, ना ये माँ की गलती है, ना ये बेटी की गलती है, ये गलती सरकारों की है कि वो मूलभूत सुविधाओं को जो है देवभूमि उत्तराखंड के, जिसको आप देवभूमि कह के प्रचारित कर रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर गाँव के अंदर आपने हेल्थ नहीं दे पाए। एजुकेशन की बात कहूँ, सार्वजनिक शिक्षा के अंदर 16,832 पद शिक्षकों के खाली हैं। आपका एजुकेशन के प्रति क्या कमिटमेंट है? और अब आप नई शिक्षा नीति लेके आए, नई शिक्षा नीति के अंदर आप कह रहे हैं कि जो ग्रांट्स हैं उसको ख़त्म करेंगे, हेफा नाम की जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको जो है लोन दिया करेगी। अब उत्तराखंड इतना, जहां सार्वजनिक शिक्षा का इतना कमज़ोर स्तर है, जहां 116 महाविद्यालय हैं जिनमें से मात्र 72 के पास अपनी बिल्डिंग है, बाकी कुछ किराए पर चल रहे हैं और बाकी सिर्फ कई तो सिर्फ कागज़ों में महाविद्यालय हैं, वहाँ आप जो है अनुदान की जगह अगर लोन देंगे तो कैसे काम चलेगा? आप इतना हवा हवाई काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हम, जी हमसे ज़्यादा धार्मिक कोई नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। और मुद्दे हैं लेकिन, और ये जनता को भी पता है ये मुद्दे हैं, जनता की एक बहुत असीम पीड़ा है, लेकिन उसके बावजूद एड्रेस यहाँ की रूलिंग पार्टी को, यहाँ के जो खुद को बहुत बड़ा नेता कहते हैं जिनकी 56 इंच की छातियाँ हैं, वो इन मुद्दों को जो है लेकर जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। हमारा जो राज्य है ये एक फेल्ड स्टेट है, मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया एक बार आयुष विद्यालयों को, जिसके अंदर अभी रामदेव जी और उनके साथ में जो बालकृष्ण जी हैं जेल के अंदर हैं, इन्होंने यहाँ पर प्राइवेट शिक्षा की एक बहुत बड़ी अपनी BA MS के बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान इन्होंने खोले। 80,000 रुपये सालाना फीस के ऊपर बच्चा प्रोस्पेक्टस में, छात्र प्रोस्पेक्टस भरता है और जाता है, और दूसरे साल के अंदर ही, चौथे सेमेस्टर के अंदर ही उसको कहा जाता है कि आपकी फीस जो 2,15,000 हो चुकी है। और अगर आप प्रोस्पेक्टस में 80,000 है, 2,15,000, और यही है बालकृष्ण और ये रामदेव जो अभी जो है जिनको फटकार लग रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, यही है करने वाले। इन्होंने स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया है बंद कमरे के अंदर, उसकी वीडियोस रिलीज हुई हैं, और प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट सब जो है इसमें मिले रहे। हाई कोर्ट का आदेश आया कि जी आप जो है उस 80,000 वाली फीस को रिस्टोर करिए, 80,000 ही लीजिए, सरकार उसको लागू नहीं करवा पाई।
ठीक बात है,
ये फेल्ड स्टेट है।
आप बताइए, इसी यही मुद्दे हैं जो पलायन का मुद्दा है उस पर आपका, आप कहाँ से हैं?
मैं देहरादून से ही हूँ।
आप मूल रूप से, आपने हाथ नहीं उठाया उस समय?
नहीं, उठाया था।
अच्छा, दिखा नहीं होगा। हाँ, आप बताइए, ये जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा।
मेरा प्रथम मुद्दा जो होना चाहिए वो है भू कानून के पश्चात मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ बेरोजगारी को। मुझे शर्म आती हुई बताते हुए कि मैंने अभी कुछ समय पहले अखबार पढ़ा था और अखबार में लिखा हुआ था कि देवभूमि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सस्ती होगी देशी और विदेशी शराब, और ठीक उसी एक हफ्ते की बाद हेडलाइन आती है जिसमें लिखा रहता है कि किताबें और स्कूल ड्रेस पर बढ़ेगी महंगाई। तो आप बताइए कि उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? और धामी जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को सस्ता करा जा रहा है, और जो हमारे लिए मतलब जो ज़रूरी है उस चीज़ को महंगा करा जा रहा है। तो आप बताइए कि अभी यहाँ पर मैं इस कैंपस का एग्जांपल लेता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और आज जो है HNBG यानी कि हिमवती नंदन भोगड़ा जो यूनिवर्सिटी है उसने मतलब 11 तारीख तक जो है फॉर्म भरने की डेट रखी थी। मैं कुछ ऐसे छात्रों को जानता हूँ जिनके पास 750 रुपये नहीं होते फॉर्म भरने के। तो आप बताइए कि ऐसे में रोजगार पाना और नौकरी के लिए तैयारी करना कहाँ तक मतलब संभव है ऐसे राज्य में? तो मेरा जो है मुद्दा अहम रोजगार ही होने वाला है, और महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है।
पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे थे 5-6-7 के करीब हमारी नजर में आए जो एग्जाम्स में पेपर लीक हुए। हाँ बताए, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
पेपर लीक तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा है। जब यहाँ पे छात्रों ने पेपर लीक के लिए आवाज़ उठाई तो छात्रों का मतलब पुलिस वाले ने उन पर लाठीचार्ज तक की। हमने जो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस देखी है छात्रों की, जब छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि पेपर लीक क्यों हुआ, जो लोग इसके पीछे हैं उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो फोटोज़ में देखा कि एक छात्र तो ऐसा था कि सर पे चोट लगी थी, तभी भी हमारी सरकार चुप थी, उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारे से बदतमीजी करी है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कि आजकल यहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है, ये कुछ भी करने को तैयार नहीं। वादे बहुत बड़े बड़े कर लेती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भूकानून का बहुत बड़ा, कितने मुद्दे हमारे उत्तराखंड में नहीं है, पर एक मुद्दे पर काम नहीं हो पाया अभी तक।
मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये जो पेपर लीक बार बार होता है, उत्तराखंड वो राज्य यहाँ पर नकल विरोधी कानून भी लागू है, लेकिन मैं थोड़ा इसको, मेरे जो समझ में आया कि नकल विरोधी कानून तो उस पर काम करेगा कि कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया, पेपर लीक एक एकदम अलग सिस्टम के तहत होता है, एक कोई अलग माफिया या अलग कोई सिंडिकेट काम करता होगा, उसके लिए क्या ईमानदारी से कोई काम की जा रही हुआ है इस पूरी समस्या पर, या फिर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है?
नहीं नहीं, गंभीर क्यों नहीं समस्या है। पेपर लीक हो रहा, बच्चों के जो उम्मीदें हैं, जो होनहार बच्चे हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, जो नकल करके वो पैसा दे के वो कर रहे हैं वो पास हो जा रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही, तो गंभीर तो धोखा है। नौजवानों के साथ। जो कानून इन्होंने बनाया है वो लॉ फेटर्निटी के लोग हैं यहाँ पर, तो वो ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ खाली है फैसाड, मतलब चलो ये बना दो दुनिया को दिखाने के लिए, वो लागू हो या ना हो वो दिखाने के लिए। UCC लागू हो नहीं होगा कभी, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हमने कानून बना दिया और ये सारी चीज़ है। तो इनके साथ ये सारी दिक्कतें आ रही हैं कि आप के लिए हवा खड़ा करने के लिए वो
इस पूरी बातचीत में जो दो तीन चीज़ें निकल कर आई, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पलायन अभी भी जस का तस मुद्दा है, और जैसा कि राहुल ने बताया कि ये आगे आने वाले समय में अपने बहुत विकराल रूप में भी सामने आएगा। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाकों में विकास संबंधी तमाम दिक्कतें हैं, सांप्रदायिकता एक बड़ा इशू है, और इसके अलावा पेपर लीक जो इनसे बातचीत में आई, क्योंकि उससे कई सारी जिंदगियों बार बार समय बर्बाद होता है, साल बर्बाद हो जाते हैं छात्रों के, ये कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर निकल कर आए। ये वो लोग हैं, वो युवा हैं जिनका अपने राजनीतिक जुड़ाव हैं, कंसर्न हैं, उस नज़रिए से भी आप इस बात को देख सकते हैं। लेकिन एक नागरिक के तौर पर और एक युवा वोटर के तौर पर ये समस्याएं यहाँ पर मौजूद हैं, उसको उस नज़रिए से देखें। न्यूज़ लॉन्ड्री का ये सफ़र हमारा अनदर इलेक्शन शो का आगे भी जारी रहेगा। हम उत्तराखंड से आप तक और भी कुछ चीज़ें पहुँचाएँगे। इसके अलावा हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। हमारे इस इलेक्शन फंड को, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा इलेक्शन फंड है, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। हमने पहले भी कहा, फिर से कह रहे हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री कोई विज्ञापन नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन से चलता है, तो इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शामिल होने के लिए।
दिस इलेक्शन सीजन, योर राइट टू चूज पुट्स यू एट द हार्ट ऑफ इट अगेन।
वी'd लाइक टू बी योर आईज एंड इयर्स।
चूज द जर्नलिज्म एंड मीडिया that serves democracy and you.
Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.